परस्पर जुड़ी चेतना, क्वांटम कर्म, ब्रह्मांडीय प्रबंधन और उत्थान की नैतिकता। ब्रह्मांड परस्पर जुड़ा है एकवचनता से स्व तक। ब्रह्मांड की शुरुआत अलगाव से नहीं बल्कि एकता से हुई। प्रारंभिक एकवचनता, प्राइमोर्डियल सिंगुलैरिटी के बिग बैंग से सभी कण, ऊर्जा और जानकारी उभरी, जो विस्फोटक रूप से अंतरिक्ष समय में फैल गई। जैसा कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान प्रमाणित करता है, ब्रह्मांड में सब कुछ कभी एक था, एक सघन असीमित बिंदु जिसमें अनंत संभावनाएं थीं। यद्यपि अंतरिक्ष तब से अरबों वर्षों और प्रकाश वर्षों तक फैल चुका है, उन प्रारंभिक क्षणों में स्थापित क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट अभी भी मौजूद हो सकता है। क्वांटम भौतिकी में उलझे हुए कण, चाहे वे कितने भी दूर हों, तत्काल सहसंबंध साझा करते हैं। यह गैर स्थानीयता, नॉन लोकेलिटी अंतरिक्ष और कारणता के बारे में शास्त्रीय अंतर्जनन को चुनौती देती है, फिर भी इसे प्रयोगों में बार बार पुष्टि की गई है, उदाहरण के लिए एस्पेक्ट ज़ीलिंगर। इसलिए यह विचार करना संभव है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अंतर्निहित उलझी हुई एकता को बनाए रखता है, जो इसके एकवचन मूल का एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है। यह न केवल परस्पर जुड़ाव के लिए एक रूपक प्रदान करता है, यह प्राचीन आध्यात्मिक सत्यों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकता है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वे स्वयं के साथ करते हैं, प्रत्येक विचार या क्रिया के परिणाम होते हैं, स्व एक सीमित इकाई नहीं है बल्कि एक बड़ी समग्र में एक नोड है। क्वांटम भौतिकी और गैर स्थानीय स्व। आधुनिक भौतिकी ने ऐसे ढांचे पेश किए हैं जो एक ऐसे ब्रह्मांड का संकेत देते हैं जो न्यूटोनियन यांत्रिकी की तुलना में कहीं अधिक परस्पर जुड़ा और सूक्ष्म है। होलोग्राफिक सिद्धांत द हूफ्ट सस्किन सुझाव देता है कि अंतरिक्ष के एक आयतन के भीतर सभी जानकारी इसके सीमा पर कोडित हो सकती है। यह ब्लैक होल सूचना विरोधाभास हॉकिंग बेकिनस्टिन को हल करने से उभरा और यह दर्शाता है कि जानकारी संरक्षित रहती है, यहां तक कि चरम गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में भी। यदि चेतना या स्मृति क्वांटम जानकारी वहन करती है, जैसा कि रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा विकसित और चोर सिद्धांत में अनुमान लगाया गया है, तो हमारे अनुभव अंतरिक्ष समय के ढांचे पर अंकित हो सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी। और चोर प्रस्तावित करता है कि न्यूरोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम सुसंगतता कोहेरेंस क्वांटम अवस्थाओं के समन्वित पतन से चेतना को जन्म देती है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष समय की ज्यामिति के प्रति संवेदनशील है। इसलिए चेतना एक मूलभूत प्रक्रिया हो सकती है जो ब्रह्मांड की क्वांटम संरचना से जुड़ी है, न कि केवल जैव रासायनिक जटिलता का एक उभरता हुआ उपउत्पाद। स्मृति, पहचान और वितरित मन। दार्शनिक रूप से ये वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियां पहचान के पुराने सवालों को और गहरा करती हैं। जॉन लॉक ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत पहचान स्मृति की निरंतरता में निहित है, लेकिन यदि स्मृति केवल न्यूरॉन्स के साथ ही नहीं बल्कि समय, अंतरिक्ष और अन्य लोगों के साथ भी उलझी हुई है, तो पहचान कहीं अधिक वितरित है। लीबनिट्ज की मोनाडोलॉजी वास्तविकता को अविभाज्य इकाइयों मोनाड्स के रूप में वर्णित करती है, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। आज हम प्रत्येक चेतना को एक क्वांटम रिफ्लेक्टर के रूप में कल्पना कर सकते हैं, एक उलझा हुआ नोड जो सभी चीजों के साथ संदाती है जो उसका सामना करता है। पैनसाइकिज्म, जो अब शैक्षणिक दर्शन में पुनर्जनन देख रहा है, गॉफ स्ट्रॉसन, यह प्रस्तावित करता है कि चेतना मूलभूत और सर्वव्यापी है, जिसे द्रव्यमान या आवेश। यह करुणा, जागरूकता और यहां तक कि नैतिक कार्रवाई को उभरती हुई गुणों के बजाय स्वयं पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं बनाता है। निष्कर्ष क्रांतिकारी है, स्व खोपड़ी तक सीमित नहीं है। हम गैर स्थानीय घटनाएं हैं, समय, स्मृति, अंतःक्रिया और पदार्थ में वितरित। अवतार और पारिस्थितिक उलझाव। दार्शनिक मॉरिस मर्लो पॉन्टी ने तर्क दिया कि हम शरीर में मन नहीं हैं जो दुनिया को देख रहे हैं, बल्कि दुनिया के प्राणी हैं जो इसके बनावट, रंगों और लय में निहित हैं। यह समकालीन अवतारित संज्ञान में समर्थन पाता है, जो दर्शाता है कि विचार केवल मस्तिष्क से नहीं बल्कि शारीरिक और पर्यावरणीय अंतःक्रिया से उभरता है। जैविक रूप से इसके गहरे निहितार्थ हैं। गया परिकल्पना लवेलॉक मार्गुलस यह तर्क देती है कि पृथ्वी एक एकल स्वनियामक जीव के रूप में कार्य करती है। जीवन वातावरण, महासागरों और भूविज्ञान को संशोधित और स्थिर करता है ताकि स्वयं को बनाए रखे। माइकोराइजल नेटवर्क, कवक जो पेड़ों की जड़ों को जोड़ते हैं, पूरे जंगलों में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संकेत साझा करते हैं। वैज्ञानिक इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। ये प्रणालियां जैविक क्वांटम नेटवर्क के समान हैं, जहां जीवन परस्पर जुड़ा और परस्पर निर्भर है। इस्लाम में कुरान प्रकृति को संकेतों आयात के रूप में वर्णित करता है, सृष्टि का प्रत्येक हिस्सा ईश्वर की प्रशंसा करता है और दैवीय व्यवस्था को दर्शाता है। मानवता को खलीफा प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, जो सृष्टि के लिए नैतिक जिम्मेदारी वहन करता है। बौद्ध धर्म में निर्भर उत्पत्ति प्रतीत्यस्मुत्पाद सिखाता है कि कुछ भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता, प्रत्येक प्राणी दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु जानकारी और निरंतरता की संभावना। मृत्यु के बाद क्या होता है? शास्त्रीय तंत्रिका विज्ञान कहता है कि चेतना बंद हो जाती है, लेकिन क्वांटम और सूचनात्मक भौतिकी गहरी संभावनाओं का सुझाव देती है। जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, यह एक सिद्धांत है जो ब्लैक होल भौतिकी में भी कायम है। यदि स्व आंशिक रूप से जानकारी से बना है तो यह विसर्जित हो सकता है, लेकिन गायब नहीं होता। और ज्वार में माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम जानकारी मृत्यु के बाद कहीं और पुनः संगठित हो सकती है। यद्यपि यह सिद्ध नहीं हुआ है, यह दर्शाता है कि चेतना पूरी तरह से स्थानीय या अंतिम नहीं है। इस्लाम सिखाता है कि हर कर्म दर्ज किया जाता है और आत्मा मृत्यु के बाद के जीवन में जारी रहती है। बौद्ध धर्म कर्म सिखाता है समय और पुनर्जनन के माध्यम से क्रिया की गूंज। यदि चेतना उलझी हुई है तो मृत्यु मिटाना नहीं हो सकता, बल्कि डिकोहरेंस हो सकता है, समग्र होने के क्षेत्र में एक अन्य अवस्था में परिवर्तन। रॉडनी का ताओ और मानवता का नैतिक संकट। स्टारगेट अटलांटिस में रॉडनी का ताओ एपिसोड हमारी स्थिति के लिए एक गहरी रूपक प्रदान करता है। रॉडनी मैके को एक प्राचीन उत्थान उपकरण के संपर्क में लाया जाता है। यह मशीन उसके जीव विज्ञान को पूर्ण करती है, उन्नत संज्ञान, उपचार, टेलीपैथी। वह अति मानव बन जाता है, फिर भी वह उत्थान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उत्थान के लिए न केवल जैविक तैयारी की आवश्यकता होती है, बल्कि आध्यात्मिक समर्पण की भी। रॉडनी अपने अहंकार से चिपकता है। वह मृत्यु से डरता है। वह अपनी बुद्धि को महत्व देता है, लेकिन करुणा को नहीं। अंत में वह लगभग मर जाता है, केवल अपने दोस्तों के निस्वार्थ कार्यों और अपने अंतिम विनम्रता के कार्य से बचाया जाता है। यह हमारी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। मानवता ने अपने उपकरणों को पूर्ण किया है, AI, क्रिस्पर, फ्यूजन रिएक्टर, निगरानी प्रणालियां, लेकिन इसमें नैतिक तैयारी की कमी है। मशीन बन चुकी है, दिल नहीं। राजा एक अभियोग के रूप में खड़ा है। हमने अपने विज्ञान का उपयोग उपचार के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए किया है। प्रौद्योगिकी हमारे केंद्र में नैतिक शून्य को बढ़ा देती है। जैसा कि रॉडनी की असफलता में, आंतरिक परिवर्तन के बिना तकनीकी पूर्णता विनाश की ओर ले जाती है। प्राचीन और नैतिक उत्कृष्टता। स्टारगेट में प्राचीन आशा का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे वहां सफल हुए जहां रॉडनी और मानवता असफल रहे। वे भौतिक रूप से परे विकसित हुए, न तो संयोग से और न ही आविष्कार से, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और नैतिक बुद्धि के माध्यम से। वे शुद्ध ऊर्जा के प्राणी बन गए जो एक उच्चतर अवस्था में मौजूद हैं। उन्होंने हथियार, अहंकार और यहां तक कि व्यक्तिगतता को पीछे छोड़ दिया ताकि विश्वव्यापी क्षेत्र के साथ एकीकृत हो सकें। उनका सबक, प्रौद्योगिकी शरीर को तैयार कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। यह बौद्ध उत्थान और इस्लामी मिराज आध्यात्मिक उत्थान को दर्शाता है, जहां दैवीय या विश्वव्यापी के साथ एकीकरण के लिए नम्रता, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है, न कि विजय या बुद्धि। लूसी प्रकाश में छोड़ देना। लूसी 2014 में नायिका की मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है जब तक कि वह खुद को मानव के रूप में पहचानना बंद नहीं कर देती। वह समय और अंतरिक्ष से परे जाती है, अंततः ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। उसका अंतिम कार्य प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, बल्कि क्षेत्र में विलीन होना है, एक साधारण संदेश छोड़ते हुए, मैं हर जगह हूँ। लूसी की यात्रा तकनीकी शक्ति के विपरीत है। यह अहंकार का एकता में विलय है, बौद्ध निर्वाण या सूफीफना, ईश्वर में आत्म विनाश का एक सिनेमाई अभिव्यक्ति। वह हथियार नहीं बल्कि ज्ञान छोड़ती है। प्रभुत्व नहीं बल्कि उपस्थिति। कर्म क्वांटम प्रतिक्रिया के रूप में। यदि सब कुछ उलझा हुआ है तो कर्म भौतिक प्रतिक्रिया बन जाता है। रहस्यवाद नहीं बल्कि संनाद। प्रत्येक विचार, क्रिया या इरादा उस क्वांटम क्षेत्र को बदल देता है जिसमें हम सभी भाग लेते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष समय के माध्यम से लहराती हैं, नैतिक कार्य होने की संरचना के माध्यम से लहराते हैं। इस्लाम सिखाता है कि एक परमाणु का वजन भी दर्ज किया जाता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि इरादा जीवनों के पार वास्तविकता को आकार देता है। क्वांटम सिद्धांत सिखाता है कि पर्यवेक्षक परिणामों को प्रभावित करते हैं और सभी कार्य निशान छोड़ते हैं। इसलिए कर्म नैतिक जानकारी का संरक्षण है। गाजा में एक हत्या ब्रह्मांड के दिल में गूंजती है। एक दयालु कार्य भी ऐसा ही करता है। कुछ भी खोता नहीं है। जैविकोत्तर विकास और ब्रह्मांडीय नागरिकता। हम जैविक विकास की उपयोगिता के अंत तक पहुंच चुके हैं। प्राकृतिक चयन हमें बहुत दूर ले गया है, लेकिन यह हमें उन शक्तियों के लिए तैयार नहीं कर सकता जो अब हमारे पास हैं। AI, नैनोटेक्नोलॉजी, जियो इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण, इनके लिए नैतिक विकास की आवश्यकता है, न कि केवल संज्ञानात्मक परिष्कार। अगला चरण भौतिक नहीं बल्कि नैतिक है। हमें ब्रह्मांडीय नागरिक बनना होगा जो क्षेत्र की गहरी सामंजस्य के साथ संरेखित हों। इसका मतलब है प्रभुत्व के बजाय करुणा, निष्कर्षण के बजाय प्रबंधन, हेरफेर के बजाय ध्यान और नियंत्रण के बजाय समर्पण। हम अब उस मिथक को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि प्रौद्योगिकी हमें बचाएगी। केवल चेतना ही ऐसा कर सकती है। निष्कर्ष, मानवता चौराहे पर। मानवता अभी एक चौराहे पर खड़ी है। वही प्रौद्योगिकी जो हमें उद्धार की ओर ले जा सकती है, हमें नरक की ओर भी ले जा सकती है। फिल्म फॉरबिडन प्लैनेट में क्रेल एक सर्वोच्च बुद्धि और तकनीकी उपलब्धियों वाली सभ्यता थी, फिर भी वे एक ही रात में अपने भीतर के राक्षसों, इड, जैसा कि सिगमंड फ्रायड ने इसे कहा, द्वारा नष्ट हो गए। उनके समान हमारी प्रौद्योगिकी में अपार शक्ति है, लेकिन गाजा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हमारे नेता स्पष्ट रूप से उस शक्ति को जिम्मेदारी से संभालने के लिए आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी रखते हैं, जिससे हम नरक के रास्ते पर हैं। यह निबंध एक अंतिम हताश पुकार है, प्रभुत्व के बजाय करुणा को अपनाएं और इन जंगली लोगों को सत्ता की बागडोर से हटाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए स्टारगेट के प्राचीनों को एक मॉडल के रूप में लें और नम्रता, बुद्धि और करुणा को विकसित करके आत्म सुधार की ओर बढ़ें, अपने अहंकारों से ऊपर उठें, न कि उन निम्न प्रवृत्तियों से चिपकी रहें जो हमें धन और सत्ता की पूजा करने का आदेश देती हैं।